हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। पिछला अध्याय जो कि भगवद गीता के अन्य अध्यायों की तुलना में काफी लंबा रहा, 72 श्लोक, या हम ये कह सकते हैं कि 72 हफ्ते, शायद उससे भी ज्यादा, कुछ 1.5 साल से ज्यादा लगा हमें पूरा दूसरा अध्याय, और वो भी संक्षिप्त रूप में समझा हमने, ये नहीं कि विस्तार से समझा है, संक्षिप्त रूप से। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कर्मयोग अध्याय 3। ये जो अध्यायों की श्रृंखला है, ये हमने इसकी चर्चा पहले भी की है कि भगवान ऐसा नहीं कि अर्जुन को कह रहे थे कि अब 3 अध्याय मैं प्रारंभ कर रहा हूं, अब 2 अध्याय समाप्त हुआ, नहीं। ये व्यासदेव जी, इन्होंने जो कि पूरा भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उसमें से उसका विभाजन कर कौन सा ज्ञान, कौन से श्लोक और वो क्या प्रसंग चल रहा, उसके अनुसार उसका शीर्षक देकर इसका विभाजन किया। तो ये जो 3 अध्याय जिस हमने अभी जो रिसाइट किया, तो कुछ आज मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि केवल 3 अध्याय का पाठ जो अभी हमने किया उसका महत्व क्या है। हालांकि हम तो एक एक श्लोक अभी लेंगे इस अध्याय के, लेकिन यह हम इसलिए बता रहे हैं आज के दिन कि अगली बार से आप ये मत समझिएगा कि वो पाठ वगैरह होने के बाद में आऊंगा लेक्चर में, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप यदि सुनना चाहते हैं कि ये जो पाठ है, ग्लोरीज ऑफ रिसाइटिंग चैप्टर 3, हर एक जो अध्याय है भगवद गीता का, उसका महात्म्य बताया गया है उसके पाठ करने का। तो ये हम एक साथ मिलकर जो हर एक अध्याय का पाठ कर रहे हैं, ये कोई साधारण कार्य नहीं है, इसलिए इसे आप गंभीरता से लीजिएगा। तो पद्म पुराण में एक ब्राह्मण की कथा है, हालांकि ये भी ब्राह्मण नहीं दिख रहे, क्योंकि ये अपने ब्राह्मण स्तर से च्युत हो चुके थे। इनका नाम था जड़ और जनस्थान के ये रहने वाले। तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, कौशिक कुल में पैदा हुए, लेकिन किसी भी प्रकार के ब्राह्मण के जो गुण हैं उन्हें नहीं अपनाया, या ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, उसके बदले ये व्यक्ति केवल पाप कर्म में लगा रहा। तो जनस्थान से एक दिवस वो उत्तर की ओर जा रहा था कुछ धन अर्जित करने के लिए, और वो भी पाप कृत्य करते हुए। तो धन जब उसने अर्जित किया, वापस जब लौट रहा था अपने जनस्थान, तो एक जंगल का रास्ता था और एक पेड़ के नीचे वो जितना उसने धन एकत्रित किया था उसे सब वो गिन रहा था। उसी समय वहां पर कुछ डकैत चोर आए और इसे जान से मार डाला, और जितना सारा उसका लूटा हुआ धन इन्होंने लूट लिया। तो क्योंकि इस जड़, जिसके इसका जो नाम जड़, इस व्यक्ति ने इतने पाप किए थे, तो तुरंत वो उस पेड़ पर एक भूत बन गया। और अब इसका जो पुत्र वो जनस्थान में अपने पिता की प्रतीक्षा में, कितने हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, मेरे पिता लौटे नहीं, तो ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और हुआ ऐसा कि जब वो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो पास के गांव वाले उन्होंने कहा कि यहां पर एक मृत व्यक्ति इस प्रकार से दिखने वाला इस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन डर के मारे कोई भी गांव वाला उस मृत शरीर को छुआ नहीं। और फिर वो भूत का प्रकोप वहां पर फैल रहा था इसी व्यक्ति के द्वारा, तो कोई उस जंगल में गुजरता नहीं, विशेष रूप से उस पेड़ के नीचे। तो अब ये इसका जो पुत्र उस पेड़ के नीचे बैठकर वो सोचने लगा कि क्या मैं कर सकता हूं मेरे पिता के उद्धार के लिए। तो सोचते सोचते उसके साथ जो कुछ वो पोटली लेकर आया था, और उसमें उसके पास भगवद गीता की एक कॉपी थी, और भगवद गीता जैसे ही उसने खोली कि कुछ इसके अंदर मुझे राह मिले कि मैं मेरे पिता का उद्धार कैसे करूं। तो जैसे ही हम कई बार किसी किताब को ऐसे ही खोल लेते हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो ऐसे उसने जैसे गीता खोली तो तीसरा अध्याय खोला कर्मयोग, और उसने उस तीसरे अध्याय का पाठ किया। जैसे ही तीसरा अध्याय का पाठ पूरा हुआ, रेसिटेशन पूरा हुआ, ये जो अब भूत की योनि में ये जड़ व्यक्ति, ये व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर शरीर में प्रस्तुत हुआ, जैसे कि दैदिप्यमान एक स्वर्गीय कोई व्यक्ति हो वैसा उसका शरीर। और ये पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ, तो समझ में आया कि तीसरा अध्याय का पाठ मैंने किया जिसके वजह से मेरे पिता का उद्धार केवल उस भूत प्रेत की योनि से नहीं, बल्कि जो नर्क में उसके आत्मा पहुंच चुका था, नर्क से उसका आत्मा वहां से मुक्त हुआ। तो फिर उसने अपने पुत्र से कहा कि इसे अभी मेरे भाई के लिए भी, क्योंकि उसका भाई भी उधर ही था नर्क में, ये ब्राह्मण जड़ इसका भाई भी नर्क में था, तो फैमिली बिजनेस चल रहा था, सब वहीं पहुंचे हुए थे, तो उसके लिए भी तीसरा अध्याय का पाठ करो। तो फिर पुत्र ने उनके भाई के लिए भी तीसरे अध्याय का पाठ किया, तो उसका भी उद्धार हुआ। फिर इसे लगा कि क्यों ना मैं जितने नरक में अभी जीव वहां पर पीड़ा भुगत रहे, यातना भुगत रहे, यम यातना, क्यों ना मैं उन सब के लिए तीसरा अध्याय का पाठ करूं। तो वो वहां पर बैठकर सब के लिए वो तीसरे अध्याय का पाठ करता रहा, करता रहा, करता रहा। और फिर उसने देखा कि वैकुंठ से कॉन्स्टेंटली विमान जा रहा है नर्क की ओर, कॉन्स्टेंटली बहुत ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया वैकुंठ से नर्क की ओर ट्रैफिक, इसके तीसरे अध्याय के पाठ करने के वजह से। और फिर यमराज वो फिर विष्णु की ओर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये कौन है और क्या ये कर रहा है कि हर क्षण यहाँ के जो पापी जीव हैं उनको मुक्ति प्रदान करवा रहा है। तब फिर भगवान श्री विष्णु ने यमराज जी से कहा कि ये है महात्म्य भगवद गीता के तीसरे अध्याय का केवल पाठ करने का। तो इसलिए अगली बार से आप लोग, ये नहीं कि हम इस हेतु पाठ करें और पाठ करने के बाद निकल जाएं, महात्म्य ये है कि उसे उस श्रद्धा से हमें पाठ करना है। तो ये पद्म पुराण में जिसमें कि गीता महात्म्य की बहुत से कथाएं हैं, हर एक अध्याय की कथा है, तो तीसरे अध्याय के केवल पाठ करने का महात्म्य बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये पूरा तीसरा अध्याय, एक ओवरव्यू इसका, कितने श्लोक है, 43, तो ज्यादा नहीं है, पिछले अध्याय में 72 श्लोक थे। तो जस्ट चैप्टर 3 एट अ ग्लांस कि इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ है, ताकि हम एक मैप रहेगा हमारे सामने कि जब हम इस तीसरे अध्याय की यात्रा प्रारंभ आज से जो कर रहे हैं तो फिर कौन से स्टेशन आएंगे, भगवान ने कैसे तीसरे, हालांकि ये सारे आचार्य हमें इसका विभाजन कर बताए हैं कि कितने श्लोक में भगवान ने क्या शिक्षाएं दी है। तो पहले श्लोक से लेके दूसरा, ये जो पहले दो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन के प्रश्न है। सो अर्जुन इज इंक्वायरिंग व्हाट आई शुड बी डूइंग, रेनन्सिएशन और शुड आई बी वर्किंग, कि क्या मुझे वैराग्य का पथ अपनाना चाहिए या कर्म का पथ। तो पहले दो श्लोकों में अर्जुन के ये प्रश्न, फिर 3.3 से 3.9 कृष्ण निष्काम कर्म योग के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। क्योंकि आपको यदि याद होगा तो दूसरे अध्याय में सकाम कर्म योग के विषय में, कर्मकांड जो कि सकाम कर्म, कामनाओं के साथ जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म। तो अब भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देंगे। और फिर 3.10 से 3.16 कर्मकांड से कर्म योग, वो श्रृंखला कैसे कोई एक साधक समझ पाएगा, तो वो भगवान कर्मकांड से कर्म योग 3.10 से 16 और 3.17 से 3.35 फिर भगवान एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि ये निष्काम कर्म योग को कैसे सही तरीके से इसका पालन किया जाए, सेटिंग द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ निष्काम कर्म योग। और फिर जो अंतिम चरण इस अध्याय का रहेगा 3.36 से 3.43, हाउ लस्ट एंड एंगर फॉइल वन्स परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि चाहे व्यक्ति कर्मकांड में हो या कर्म योग में हो, कैसे काम और क्रोध, काम एश क्रोध एश, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का, कि उसके वजह से निष्काम कर्म योग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो यह है पूरा तीसरा अध्याय एट अ ग्लांस, एक पूरे स्लाइड में पूरा तीसरा अध्याय क्या रहेगा, क्या उसमें, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, ये हमारे आचार्य इस प्रकार से विभाजन कर एक एक श्लोक का बताएं। तो अब हम यदि देखें तो दूसरा अध्याय जब संपन्न हुआ तो भगवान ने दूसरे अध्याय के समाप्ति के पश्चात प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा क्या की कि अर्जुन अब मेरी तरफ से तो मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो कि तुमने पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में पूछे थे। तो अर्जुन के लिए, अब अर्जुन को देखते हुए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि या तो तुम गांडीव उठाओ या तुम्हारे और कुछ प्रश्न है तो पूछो। तो ये जो बीच में अंतराल रहा, भगवान की प्रतीक्षा, तो वहां से व्यासदेव जी ने ये तीसरा अध्याय प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यासदेव जी ने ये तीसरा अध्याय या इसका शीर्षक, इसका विभाजन किस प्रकार से किया कि अब एक, जैसे कहते हैं ना, एक सीन खत्म हुआ। अभी कौन सा सीन खत्म हुआ, भगवान ने जो कुछ अर्जुन के जितने सारे प्रश्न थे वो दूसरे अध्याय में और फिर अंत में जो उस अध्याय का चरम श्लोक कह सकते हैं उसमें, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कि ब्राह्मी स्थिति को कैसे कोई प्राप्त कर सकता है और फिर मेरे लोक को कैसे प्राप्त कर सकता है। अब भगवान के अनुसार उन्होंने तो जो अल्टीमेट ज्ञान था वो दे दिया, लेकिन अर्जुन वो अब कंफ्यूज हुए। और अर्जुन का जो कंफ्यूजन वो हमारे लिए लाभदायक रहा, क्योंकि फिर तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। नहीं तो यहां पे आप देखिए, भगवान की प्रतीक्षा का दो कारण था, एक थोड़ा सा बीच में साइलेंस था सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के बीच में, तो वो साइलेंस की जो घड़ी थी उसमें भगवान ये सोच रहे थे, या तो अर्जुन तुम गांडीव उठाओ युद्ध प्रारंभ करो, यदि अर्जुन गांडीव उठाकर युद्ध प्रारंभ कर देते तो फिर तीसरा अध्याय नहीं रहता। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, अर्जुन ने प्रश्न पूछ, जो कि भगवान भी चाहते थे, इसलिए भगवान ने उकसाया भी इस प्रकार से कि थोड़े से भगवान ने ऐसे श्लोक दूसरे अध्याय में कहे जिसके वजह से अर्जुन के अंदर थोड़ी सी और प्रगत जिज्ञासा आए, जिसके वजह से कर्म योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस भगवद गीता का यह अध्याय वो प्रारंभ हुआ। तो अब हम दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय इन दोनों में कनेक्शन क्या है, जैसे कि हम हमारे पहले सत्रों में ये देखते थे कि श्लोकों में कनेक्शंस क्या होता था, तो अभी ये अध्याय में कनेक्शन क्या है दूसरे और तीसरे अध्याय में, क्योंकि कनेक्शन से ही व्यासदेव जी ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो दूसरे अध्याय में संक्षिप्त रूप में यदि हम समझें तो भगवान ने ये कहा कि बुद्धि योग के द्वारा हे अर्जुन जितने भी गर्हित कर्म हैं, यदि आपको ये श्लोक याद है, दुरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, तो इस श्लोक में भगवान ने और ऐसे ही बहुत से श्लोक के द्वारा भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम बुद्धि योग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा, बुद्धि योग को ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा, तो उसके द्वारा तुम गर्हित कर्मों से बचे रहो। तो अब ये जो पूरा जिस्ट सेकेंड चैप्टर का ये था, तो अब अर्जुन को प्रश्न उठा कि यदि आप ये कह रहे हो कि गर्हित कर्मों से मैं दूर रहूं, तो अर्जुन की दुविधा क्या, आज के श्लोक से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को, तो फिर आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे, जब आप बोल रहे हो कि बुद्धि योग से गर्हित कर्मों से दूर रहो, तो सबसे ज्यादा गर्हित कर्म तो यहां पर होने वाला है। तो घुमा फिरा के अर्जुन वहीं पे पहुंच रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि भगवान घुमा फिरा के उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच रहे हैं। और क्यों पहुंच रहे हैं आज के हमारे सेशन के एंड में वो हम समझेंगे कि अर्जुन घुमा फिरा के वहीं पे वही प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ये दूसरे अध्याय और आज का जो तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है उसका कनेक्शन। तो आज का तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भगवान को यहां पर दो नामों से पुकार रहे हैं अर्जुन, एक तो जनार्दन और केशव। तो अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, हे केशव, आपके मत अनुसार, पिछले अध्याय में आपके मत अनुसार जायसी, जायसी का अर्थ है बेहतर, बेहतर है क्या, बुद्धि, तो फिर यदि आपके मत अनुसार हे जनार्दन बुद्धि कर्म से बेहतर है, तत्किम कर्मणि घोरे माम, फिर आप मुझे ये कर्म में क्यों लगा रहे हो? और वो भी कौन सा कर्म? ऐसा घोर कर्म। तो अर्जुन यहां पर ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं। अर्जुन ने बहुत ध्यान से सुना है, लेकिन क्यों कि अर्जुन की मति एक दिशा में जा रही है, जैसे वो सीढ़ी होता है ना, क्लॉग्ड सीढ़ी, अटक जाता है एक ही जगह पे, अटकता है वो सीढ़ी वैसे। तो अर्जुन हालांकि ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि अर्जुन के मन में वो, आप सिचुएशन देखिए कि रणभूमि पर है अर्जुन और गांडीव उनके हाथ से फिसल चुका है और सामने कुरु सेना और उनके सारे अग्रज बैठे हुए, खड़े हुए, भीष्म, द्रोण इत्यादि ये सारे। तो इसलिए अब अर्जुन यहां पर श्लोक में लग रहे होंगे कि टोटली कंफ्यूज्ड दूसरा अध्याय सुनने के पश्चात। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अरे दूसरा अध्याय सुनने के बाद अगर मैं कंफ्यूज ना हूं अर्जुन की तरह, तो फिर मैंने दूसरा अध्याय नहीं सुना। ये शिक्षा नहीं है कि अरे पूरा 72 भगवान से सुनने के बाद अर्जुन कंफ्यूज है, ये फिर से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर मैं आगे क्यों बढ़ूं? नहीं, फिर क्योंकि हमारे आचार्य फिर बताते हैं कि ये अर्जुन कौन सी स्थिति में थे और क्यों अर्जुन ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तो आज के श्लोक का अनुवाद पूरा इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तत्किम कर्मणि घोरे माम, माम नियोजसी केशव, क्यों मुझे इसमें लगा रहे हैं? हे केशव, हे जनार्दन। तो सबसे पहले हम लेंगे कि अर्जुन ने भगवान को जनार्दन और केशव इन दो नामों से पुकारा। तो जनार्दन नाम के दो अर्थ, अब ये जो दो अर्थ हैं ये चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने अर्जुन के दृष्टिकोण से समझाया है कि अर्जुन के मन में इस समय क्या चल रहा है और ऐसी स्थिति में, अर्जुन की ऐसी मन स्थिति में अर्जुन ने भगवान को जनार्दन और केशव इन दो नामों से क्यों पुकारा। तो इसका विभाजन यदि हम करें तो जनार्दन का विभाजन होगा जन और अर्दन। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जन का अर्थ है हे भगवान स्वजन, और अर्दन का अर्थ है कष्ट पहुंचाना। तो जनार्दन का अर्थ क्या हुआ? स्वजन को कष्ट पहुंचाना। अब ये अर्जुन का दृष्टिकोण है, ये अर्जुन का ट्रांसलेशन है जनार्दन का, ये समझना जरूरी है पहले। तो यहां पर अर्जुन बहुत ही व्याकुल स्थिति में भगवान के सामने, क्योंकि अब क्या है कि भगवान ने इतना लंबा चौड़ा दूसरा अध्याय सुना है, तो अर्जुन की स्थिति क्या है कि अब मैं तुरंत तो ये नहीं कह सकता कि आपने जो कुछ सुना है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा या मैं उसे मानने नहीं वाला, और अगर मैं मान लेता हूं तो मैं अब पूर्ण रूप से तैयार नहीं हूं। तो इसलिए उस व्याकुल स्थिति में, देखिए व्याकुल स्थिति में भी अर्जुन का कैलिबर देखो कि ऐसी व्याकुल स्थिति में भी अर्जुन भगवान के ऐसे ऐसे नाम को याद कर कर पुकार रहे हैं जिसके द्वारा वो एक इनडायरेक्ट हिंट दे रहे भगवान को। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं जनार्दन कि ये जो आपका नाम है इसका एक अर्थ है कि जो स्वजनों को कष्ट पहुंचाते। अब इसका कनेक्शन आगे हम केशव नाम की व्याख्या जब देखेंगे तो केशव नाम से भी है। ये है कि अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आपने वृंदावन में जितने असुरों का वध किया, ये सारे केशी, बकासुर, अघासुर, पूतना, ये सारे जितने असुर आए, इनका जिनका आपने वध किया, ये आपके कोई सगे नहीं थे। हाँ, कोई था आपका सगा? था कोई? कोई सगा नहीं था, इसलिए आराम से मार दिया आप। लेकिन यहां जो मेरे सगे सामने खड़े, तो आप इस प्रकार का नाम क्यों ले रहे हैं, मेरे द्वारा क्यों बुलवा रहे हैं आपको इस प्रकार का नाम कि जो स्वजनों को कष्ट पहुंचाए? आपने तो कभी किया नहीं ऐसा। कभी नंद महाराज और बाकी गोप सखागण उनके ऊपर कभी आपने कोई प्रहार किया नहीं? उनके साथ तो माखन मिश्री की लीला, और मुझे कह रहे कि मारो चलो अपने गुरुजनों को। सांदीपनि मुनि का कभी वध किया आपने? तो अर्जुन ये समझना है कि अर्जुन व्याकुल है बहुत। और क्योंकि ये नहीं कि हम भी फिर ऐसी भाषा भगवान से बोलना शुरू करें, क्योंकि अर्जुन और भगवान अब साक्ष्य रस में हैं, इसलिए उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही घनिष्ठ है, गहरा है। इसलिए अर्जुन इस प्रकार से एक व्यंग के तौर से भी भगवान को जनार्दन के रूप में बोल सकते हैं। तो ये पहला अर्थ है जब अर्जुन भगवान को आज के श्लोक में हे जनार्दन पुकार रहे हैं। दूसरा अर्थ जनार्दन का, फिर से जनार्दन, ऐसे ही विभाजन इसका हुआ है। तो जन का एक और अर्थ संस्कृत में, जो व्यक्ति कल्याण की कामना, अपने उद्धार कल्याण की कामना रखता है वो। और अर्दन का एक और अर्थ है बेचैनी से आया हुआ, बहुत बेचैन स्थिति में अपनी कल्याण की कामना से कहीं पहुंचा जो है। तो इसलिए जनार्दन भगवान को इसलिए पुकारते हैं कि इस भौतिक संसार में सभी लोग कल्याण चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, सभी लोग कल्याण चाहते हैं। और क्योंकि कलयुग में भौतिक संसार में सभी बेचैन हैं, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए बेचैन हैं, तो वो किसके पास जाते हैं? जनार्दन के पास। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आप विख्यात हो कि जो बेचैन अवस्था में अपने कल्याण हेतु आपके समक्ष आते हैं, उनको आप कल्याण प्रदान करते हो, और मैं इतने निकट, मैं आपका सखा, क्या आप मेरा कल्याण नहीं करोगे? जो कि मैं इतने बेचैन, मतलब दोनों है, मैं बेचैन भी हूं और फिर कल्याण का इच्छुक भी हूं। तो इसलिए हे जनार्दन भगवान को उस नाम से पुकारते हुए अर्जुन बोल रहे हैं। और उसके साथ फिर केशव। अब देखिए, हमारे अर्जुन ने तो एक लाइन में कह दिया हे केशव हे जनार्दन, लेकिन ये जो हमारे आचार्य हैं चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, प्रभुपाद इत्यादि, इन्होंने केशव नाम के 6 अर्थ कि अर्जुन ने भगवान को केशव नाम से क्यों पुकारा उस स्थिति में। तो सबसे पहला अर्थ हम देखेंगे, फर्स्ट मीनिंग, किसका फिर विभाजन ऐसे हुआ है, क ईश और व। तो क का अर्थ है ब्रह्मा जी, ईश कहते हैं शिव जी को, और व का अर्थ हुआ वशीभूत। तो जिनके वशीभूत ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं वो हैं केशव। तो यहां पर अर्जुन भगवान को ये जो पहला अर्थ केशव का बताते हुए उनको पुकार रहे हैं केशव कि आपके वशीभूत ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं, तो ये जो मेरे अंदर विषाद उत्पन्न हुआ है इसको आप अपने वशीभूत नहीं कर सकते। अरे इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी शिव जी जैसे दिग्गजों को आपने अपने वशीभूत कर रखा है, तो केवल अर्जुन के विषाद को नहीं, अर्जुन ये कह रहे हैं कि जो पूरी स्थिति निर्माण हुई है ये आपके सामने क्या है, ये स्थिति कि एक हस्तिनापुर और ये कुछ सैनिक कौरव के, कुछ हम पांडव के सैनिक, और हम लोग एकत्रित हुए हैं एक हस्तिनापुर के राज्य का ये निर्णायक युद्ध के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति को आप अपने वशीभूत नहीं कर सकते? अरे आप केशव हो जो ब्रह्मा जी और शिव जी को वशीभूत करके रखे हो, तो इसलिए हे केशव, ये पहला अर्थ केशव का अर्जुन ने भगवान के सामने प्रस्तुत किया। अब एक और तरीके से ये जो केशव भगवान का नाम है इसका विभाजन हुआ है केशी और व, तो केशी जो कि एक असुर, सबसे लास्ट असुर जो भगवान वृंदावन में मारे और उसके बाद बाहर निकले वो केशी था, तो इसलिए जो लेटेस्ट डेमन किलिंग पास्ट टाइम हुआ था भगवान का वो केशी का था वृंदावन में। तो केशव भगवान को ये नाम मिला केशी का वध जिन्होंने किया केशव, तो इसका हमने पहले अभी अब जस्ट अभी हमने सुना था कि इसका कनेक्शन जनार्दन से कैसे है कि अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपने केशी जैसे असुरों का वध किया लेकिन अपने सगे संबंधियों का नहीं किया, इसलिए आप मुझे क्यों मेरे सगे संबंधियों को मारने के लिए उकसा रहे हो, तो इसलिए हे केशव। तीसरा अर्थ केशव का आचार्य बताए हैं कि भगवद गीता कौन से महीने में भगवान ने अर्जुन को सुनाई, मार्गशीर्ष, तो ये मार्गशीर्ष का जो महीना अप्रोक्सीमेटली दिसंबर का जो हमारा महीना होता है उसमें आते, तो मार्गशीर्ष का जो महीना है उसको अग्रहायण महीना भी कहते हैं और केशव मास भी कहते हैं। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को आगे ये कहा कि मासानाम मार्गशीर्षाणाम, कि जितने भी महीने हैं उनमें से मैं कौन सा महीना हूं, मार्गशीर्ष भगवान ने कहा। तो ये मार्गशीर्ष का महीना जिसको अग्रहायण महीना भी कहते हैं और केशव मास भी कहते हैं। देखो अर्जुन की जनरल नॉलेज भी कितनी अच्छी है और वो भी ऐसी स्थिति में, तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि ये जो केशव का महीना है, ये केशव का महीना एक बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला महीना है, क्योंकि इस महीने में जो किसान हैं वो खेत की कटाई करते हैं और उनकी फसल उगती है और बहुत ही उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, मौसम बहुत अच्छा रहता है और खेत खलियान सब उनकी फसल सब फली फूली रहती है। तो ये महीना, जिस महीने में लोग सब इतने आनंदित रहते हैं, 31st मनाने वाले हैं अभी थोड़ी सी समय, तो इस महीने में सब लोग इतना आनंदित रहते हैं और आप मुझे ऐसे घोर कर्म में लगा रहे हैं। मैं ही मिला था इस पूरे दिसंबर के महीने में, केशव के महीने में मैं ही मिला था ऐसे घोर कर्म को करने के लिए, तो इसलिए ये तीसरा अर्थ अर्जुन जो भगवान को केशव के नाम से पुकार रहा है। चौथा अर्थ कि केश बाल को कहते हैं और यहां पर भगवान के जो बाल हैं वो कैसे हैं हमने देखो, क्या हमारे मदन गोपाल जी के बहुत भगवान, ये देखो आप बाल देखो घुंघरालू है, वक्र, घुंघरालू बाल। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप खुद भी त्रिभंग रूप में खड़े होते हो, आपके बाल भी घुंघरालू टेढ़े रहते हैं सब, आप भी टेढ़े खड़े रहते हो, मुझे क्यों टेढ़े कर्मों में लगा रहे हो? तो एक कविता में एक कवि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने जितने सारे देवी देवताओं को देखा, मेरे हृदय में खाली हे कृष्ण आप ही अट सकते हो। क्यों? क्योंकि आप टेढ़े खड़े रहते हो और मेरा हृदय बहुत टेढ़ा है, तो फिटिंग अच्छा होगा, आप ही का फिटिंग होगा खाली उसके अंदर। लेकिन अर्जुन यहां पर कोई भगवान को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप खड़े रहते हो उस त्रिभंग टेढ़ी मुद्रा में, आपके बाल सारे वक्र हैं, केश वक्र, इसलिए आपको केशव कहा गया, लेकिन मुझे आप ना इस टेढ़े कर्म में मत लगाइए, ठीक है? तो ये केशव बुलाने का चौथा अर्थ। पांचवा अर्थ, जयदेव गोस्वामी उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों में दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी ने जो लिखा, उसमें भगवान के जितने अवतार, केशव धृता नरसिंह रूपा, केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता शुकर रूपा, जितने भगवान के दश अवतार, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, केशव धृता और फिर ये रूपा, केशव धृता ये रूप, मत्स्य रूपा इत्यादि। तो अर्जुन यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए, आप जो इतने अवतारों में आते हो, लेकिन उन सभी अवतारों के स्रोत आप हो केशव। ये सारे जितने मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह जितने सारे अवतार, उनके हे केशव आप स्रोत हो। और ये जो पृथ्वी का भार कम करने का काम, ये आपके अवतारों का है, मुझे क्यों लगा रहे हो उसमें, आप करो, क्योंकि आप इनके सबके सोर्स हो। हालांकि अर्जुन नहीं पहचान रहे कि भगवान वही कर रहे हैं कि पृथ्वी का भार कम कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के द्वारा, तो अर्जुन नहीं समझ पा रहे, इसलिए यहां पर केशव नाम से भगवान को ये संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। और फिर छठा अर्थ, चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, ये बहुत ही एसोटेरिक मीनिंग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अर्जुन भगवान को देख रहे हैं ध्यान से, और भगवान को देखते हुए अर्जुन कहते हैं कि आपको ये जो केशव नाम मिला है, इसका एक और कारण ये है, केश विन्यास करोति इति केशव। केश विन्यास का अर्थ क्या होता है, कि बालों को संवारना, केश विन्यास, बालों को संवारना। तो आप बहुत प्रसिद्ध हो बालों को, केश को संवारने के लिए, किसके? तो कोई यदि कहे कि राधा रानी का उल्लेख हुआ है क्या कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, हुआ, यहां पर अर्जुन कर रहे हैं राधा रानी का उल्लेख, इसलिए दिल्ली में जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है, कौन सा है, राधा पार्थ सारथी। तो ये प्रश्न प्रभुपाद को पूछा गया था कि पार्थ सारथी के साथ राधा रानी, ये कुछ मिसमैच लगता है, क्योंकि पार्थ सारथी तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर थे, पार्थ के सारथी, वहां राधा रानी कहां से आई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। तो यहां पर अर्जुन जो आज के श्लोक में भगवान को केशव पुकार रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आपने वृंदावन में तो ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, श्रीमती राधा रानी के केश विन्यास, रास लीला, दामोदर लीला, ऐसी ऐसी मधुर लीला, तो आपने तो ऐसी मधुर लीला में आनंद लिया, हमने सुना, लेकिन बाहर आने के बाद, वृंदावन से बाहर आने के बाद मुझे गांडीव थमा दिया, मारो इनको, खून खराबा, ये क्या? आपकी स्वयं की इतनी मधुर लीलाएं, लेकिन मुझे यहां पर लहूलुहान लीलाओं में लगा रहे हो। तो इसलिए अर्जुन, देखिए अर्जुन भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं कि भगवान को ऐसे छे छे अर्थ केशव के, छे छे अर्थ सुना सुना के, जनार्दन के दो अर्थ, केशव के छह अर्थ, ऐसे कुल मिला के आठ अलग तरीके से भगवान को वो बोल रहे हैं कि बस अब आप मेरे को अगले श्लोक में ये कह दो कि अर्जुन मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। लेकिन भगवान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, भगवान है भाई। तो इसलिए अर्जुन जो अलग अलग तरीके से साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीके से भगवान को ये बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप बोल दो कि मैं युद्ध न करूं, ये गांडीव छोड़ दो और युद्ध को छोड़ दो, नहीं। लेकिन भगवान नहीं मानने वाले थे। तो अब किम कर्मणि घोरे माम माम नियो जैसे केशव, कि हे केशव, हे जनार्दन, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? तो श्रील प्रभुपाद ये प्रश्न पूछते हैं, तो घोर कर्म का अर्थ क्या होता है? जैसे ये जो शब्द है घोर, इसे क्या समझ में आता है कि ऐसा कर्म जो कि बहुत ही भयावह हो, कोई भयानक कर्म? तो अर्जुन ने आज के श्लोक में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही उपयुक्त शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक तो भगवान के नामों को, जो अलग इतने सारे अनगिनत नामों में से ये दो नाम चुने, जनार्दन और केशव, और फिर कर्मों के विषय में क्यों मुझे ऐसे घोर कर्म में लगा रहे हो? ये नहीं कहा कि क्यों मुझे युद्ध में लगा रहे हो, घोर कर्म में, ऐसे भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो यदि हम घोर कर्म को दो दृष्टिकोण से समझे, तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर जब प्रवचन दिए तो उन्होंने ये दो अर्थ बताए घोर कर्म के, एक बाहरी स्तर पर और एक आंतरिक स्तर पर। तो अब यदि हम किसी भयानक कर्म को होता हुए देखें कहीं पर, तो उसमें हम उसको बाहरी रूप से समझ सकते हैं और आंतरिक रूप से समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर कौन सा घोर कर्म अर्जुन के दृष्टिकोण से होने जाने वाला था? ये सब मार काट, खून खराबा, ये सब कुछ होने वाला था। अब देखिए अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं, मानो कि कोई प्रश्न, भगवान ये प्रश्न अर्जुन को पूछे कि भाई तुम जब अज्ञातवास में थे तो अज्ञातवास में भी तुमने इन्हीं के साथ युद्ध किया था कि नहीं? राजा विराट के नगर में जब ये सारे आए थे उस समय तुमने इन्हीं के साथ युद्ध किया था, तब तुम्हें लगा नहीं था कि घोर कर्म है? अभी लग रहा है घोर कर्म है? तो अर्जुन उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, वो घोर कर्म नहीं था, क्योंकि उस समय दुर्योधन और ये सारे जो कुरु थे उन्होंने राजा विराट के गायों को चुरा लिया था, और अर्जुन इनको मारे नहीं थे, केवल हराए थे और गायों को छुड़ाकर वापस राजा विराट को लौटा दिए थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उस समय जो मैंने इनके साथ युद्ध किया उसमें मैंने खाली हराया इनको और खाली गायों को छुड़ाने के लिए, लेकिन अभी जो मैं यहां पर खड़ा हूं इनके सामने, मैं तो इनको जान से मारने वाला हूं, क्योंकि जान से मारने के पश्चात ही हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर महाराज राज्य कर पाएंगे। तो दोनों में अंतर है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। आज के श्लोक में अर्जुन की बुद्धिमत्ता देखिए। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि हमें किसी भी घोर कर्म या भयानक कर्म या किसी भी कर्म को, चाहे वो अच्छा हो या भयानक कर्म हो, उस कर्म को हमें किस तरीके से समझना, एक बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अब ये क्या हो रहा है आपके सामने? हाँ, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि क्या ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, घोर कर्म या कोई बहुत ही कृपालु कर्म चल रहा है। ये तो हमने कोई ऐसी फोटो ली जिसकी ज्यादा कुछ खून वून नहीं यहां पर है, ऐसी ऐसी फोटोज है ये ओपन हार्ट सर्जरी की जिसमें सब जगह पर ये पूरा जो रिब केज है ये तोड़ा जाता है, ये अलग किया जाता है और फिर वो हार्ट है उसको बाहर निकाला जाता है। और उस अवस्था में तो सोचिए कि अगर कोई बाहरी दृष्टिकोण से इसे देखे तो कितना भयानक कर्म चल रहा है। वो रिश्तेदार अगर देखे कि वो सर्जन अंदर क्या लेके आ रहा है, कोई रिश्तेदार बाहर बैठे रहते ना आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते हैं और सर्जन अंदर जा रहा है वो सब है ना बड़े बड़े वो औजार लेकर, औजार लेकर जाना पड़ता ना उसको। एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जन वो माला पहन के एंट्री किया गले में, तो जो पेशेंट जिसका ऑपरेशन होने वाला था उसने पूछा कि आप माला पहन के क्यों आए। बोला देखो भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो माला मेरे लिए, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो माला तेरे लिए। तो अब ये बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो घोर कर्म दिख रहा है, पूरा चीर फाड़ खून खराबा है ना। तो भगवान की तुलना अगर सर्जन से की जाए है कि नहीं, तो ये जो पूरी सृष्टि के अंदर ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा था, दुर्योधन। आर्टरीज में ब्लॉकेज होता ना वैसे, तो ब्लॉकेज धर्म की ब्लॉकेज, धर्म की ग्लानी, धर्म की ग्लानी मतलब धर्म में ब्लॉकेज, तो दुर्योधन क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए उसे पूरा ओपन हार्ट सर्जरी भगवान जो सर्जन है वो करने के लिए काटना पड़ा। और फिर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि औजार तुम पकड़ो क्योंकि तुमको क्रेडिट मिलना चाहिए सक्सेसफुल सर्जरी करने का। मैंने तो बहुत सी सर्जरी की है, अभी अभी वृंदावन में कितनी सर्जरी में करके आ रहा हूं और हर अवतार में मैं तो करता ही रहता हूं, लेकिन ये तुम्हारे से कनेक्टेड है ना दुर्योधन ये सब, तो इसलिए यू टेक द क्रेडिट, तुम औजार हाथ में लो, तुम गांडीव हाथ में लो। तो इसलिए आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कृपा हो रही है उस सर्जन की, किसके ऊपर, उस पेशेंट के ऊपर। तो ये श्रील प्रभुपाद का उदाहरण। अब एक और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझने के लिए ये है कि अर्जुन ने जो बुद्धि योग के विषय में सुना दूसरे अध्याय में, लेकिन अर्जुन का लिसनिंग कैसा था, ये एक टर्म है आर्ट ऑफ लिसनिंग में, ये एक टर्म हम लोग यूज करते हैं सेमिनार्स में, सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब कि हमें जो सुनना है हम बस उस पर ही गौर करते हैं। तो अर्जुन ने इतने सारे श्लोक सुने, 72 श्लोक सुने, लेकिन अर्जुन ने फोकस किस पर किया कि बाबा आपने बोला है कि सकाम कर्म से अच्छा है बुद्धि, और बुद्धि का मतलब है कि बुद्धि में कर्म करने की जरूरत नहीं, तो फिर आप मुझे क्यों लगा रहे। बहुत से और भी श्लोक भगवान ने कहे थे पिछले अध्याय, लेकिन अर्जुन ने कौन सा सिलेक्ट किया। तो ये कई बार हम भी भगवद गीता में जो जो अध्याय और श्लोक हमें अच्छा लगता है, ज्यादातर साधारणतः भारत में ये कर्म करते रहो बस, ये भगवद गीता का सिद्धांत है और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति तो प्रभुपाद के पास आए, बोले कि भगवद गीता का सबसे अच्छा श्लोक मुझे क्या लगा, यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा हो हे अर्जुन अभी तुम करो, मैंने पूरी गीता सुना दी है, अब तुम अपने मन मर्जी करो। ये होना चाहिए, भगवद गीता इसलिए मुझे अच्छी लगती है, अपने मन की मर्जी करते रहो, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। एक दंपति थे, तो उसमें वो जो पति अपनी पत्नी को ले जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता है कि इसे ना ऊंचा सुनाई देता है, तो बहुत तकलीफ होती है घर पे, तो आप कुछ कुछ मेडिसिन दीजिए। तो डॉक्टर उसको कहता है कि ऐसा कीजिए, आप मुझे बताइए कि कितना ऊंचा सुनाई देता है उनको, कितने डिस्टेंस पे कितना ऊंचा सुनाई देता है, क्योंकि उसके अनुसार फिर मेडिसिन के इंटेंसिटी मैं दूंगा। बोला वो मैं कैसे पता करूं? बोला सिंपल है कि कितने डिस्टेंस पे उनको सुनाई देता है एक्चुअली, उतना डिस्टेंस आप नाप लीजिए। बोले ठीक है। तो फिर वो गए घर पे, उन्होंने पहले 40 मीटर दूर खड़े रहे हो और अपने पत्नी से पूछा आज खाने में क्या बनाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर और थोड़ा आगे गए 20 मीटर आगे, आज सुनो खाने में क्या बनाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और 10 मीटर आगे गए, एकदम पास में आ गए, खाने में क्या बनाए, तो पत्नी बोलती है मैं 3 दफा कह चुकी हूं दाल चावल बनाए। तो कई बार प्रॉब्लम हम में होती है, तो वैसे कई हमको लग रहा होगा कि ये क्या भगवान में प्रॉब्लम है क्या, इतने बार बार वही श्लोक क्यों बोल रहे हैं, प्रॉब्लम अर्जुन में। इसलिए हम भी अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल के कि हाँ, ये नहीं कि सिलेक्टिव लिसनिंग शुरू कर दें। तो ये है सिलेक्टिव लिसनिंग, जो कि अर्जुन, अब अर्जुन की स्थिति क्या है कि अर्जुन बार बार उसी पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे कैसे मैं युद्ध से बचूं, ये न के न प्रकार है, क्योंकि अभी तक भगवान ने एकदम अल्टीमेट भक्ति योग और सरेंडर वो पूरा इस्टेब्लिश नहीं किया। तो इसलिए केवल ये कर्म कांड और कर्म योग और बुद्धि योग, केवल इसी के द्वारा अर्जुन यहां वहां थोड़ा समझ पा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं समझ पा रहे अर्जुन। तो अब यही एक जो मैं एक सेमिनार लिया था आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो इसमें एक होता है सिलेक्टिव लिसनिंग और एक है टेक्स्चुअल लिसनिंग। टेक्स्चुअल लिसनिंग होता है कि जब हम कोई वार्तालाप चल रहा है और उनके जो स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं, हम केवल उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक है टेक्स्चुअल और एक है कॉन्टेक्स्चुअल लिसनिंग। जैसे कि अभी मैं कुछ बता रहा हूं आपको, तो क्योंकि आप पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हो, इसलिए आपको समझ रहा है कि मैं किस संदर्भ में बता रहा हूं, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्चुअल लिसनिंग। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 2 लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये वार्तालाप ऐसा है, तो एक दूसरे से पूछता है, अच्छा इसका सर पहले काटूं कि हाथ काटूं? तो दूसरा बोलता है नहीं 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 पहले सर काट, लेकिन पिछली बार तो आपने कहा था हाथ काटने के लिए। उसने कहा नहीं, वो उसके लिए मैंने बोला था पहले हाथ काटने के लिए, इसका पहले सर काट। तो अब ये आपने क्या लिसनिंग किया है, इसको बोलते हैं टेक्स्चुअल लिसनिंग, क्योंकि आपको पता नहीं कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में ये लोग बोल रहे हैं। दोनों बताऊं आपको, ये 2 दर्जी हैं, 2 दर्जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो एक दर्जी दूसरे से पूछ रहा है कि वो शर्ट का पहले गला काटूं या हाथ काटूं, क्या काटूं? हमको क्या लग रहा, बाप रे पुलिस को बुलाओ जल्दी जल्दी, 100 इधर तो किसी किसी का गला काटा जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है। तो यहां पर अर्जुन जो है भगवान के टेक्स्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान ने जो पिछले अध्याय में जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग बताया कि भगवान ये कह रहे हैं दुरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि हे धनंजय अपने बुद्धि से गर्हित कर्म जो है यवरम उससे दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि जो सही कर्म है वो नहीं करना है, गर्हित कर्मों से दूर रहना है। और भगवान ये अर्जुन को पूछे कि तुमने कैसे निर्णय ले लिया है कि ये युद्ध करना गर्हित कर्म है, तुमने कैसे तुम्हारे पास किसने अथॉरिटी दिया? तो अर्जुन वो टेक्स्चुअल लिसनिंग में अभी अटके हुए, जबकि पूरी भगवत गीता को हमें कैसे समझना है कॉन्टेक्स्चुअल संदर्भ में जाते हुए। इसे मेरे ख्याल से हम लोग स्कूल में भी ये सब पढ़े हैं ना, क्या था वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था कि इसके अनुसार आप मतलब जो भी मुहावरे भी होते थे कि मुहावरे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। मुझे याद है हिंदी में हमको ये बहुत आता था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मुहावरे देते थे फिर मुहावरे के ऊपर आप लाइन लिखिए उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। एक 9th स्टैंडर्ड का हमारा पेपर था, उसमें याद है मुझे हिंदी में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक मुहावरा दिया था, करे कराए पे पानी फिर जाना, तो इस पे लाइन लिखिए। तो मेरा बगल वाला जो बैठा था उसने लिखा मैं सुबह सुबह टॉयलेट गया। फ्लश करते करे कराए पे पानी फिर गया। तो ये अब देखिए टेक्स्चुअल कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग यहां पे बिल्कुल, अब वो अपने तरीके से बता रहा है कैसे करे कराए पे पानी फेर दिया उसने। तो इसलिए भगवत गीता को हम कैसे समझ पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए और श्रील प्रभुपाद ने सारे तात्पर्यों का निचोड़ हमारे जो ये सारे आचार्य हैं चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इन सब का निचोड़ देखकर जो, इसलिए भगवत गीता को हमें इनके दृष्टिकोण से समझना है और तब जाकर हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे। और यही आज के श्लोक के द्वारा हमें सीखना है अर्जुन के उदाहरण से। ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन कोई बहुत ही नौसिखिया कोई लिसनर है, नहीं, ये समझ लीजिए कि अर्जुन एक अभिनय कर रहे हैं, इज प्लेइंग अ रोल ऑन आवर बिहाफ दैट हाउ वी शुड कम आउट ऑफ द इग्नोरेंस एंड कम टू द ट्रू पाथ ऑफ नॉलेज। तो फिर अगले बुधवार को 3.2 में अर्जुन का अगला प्रश्न रहेगा मुझे परम श्रेय का आप उपदेश दीजिए, कि मैं यहां पर थोड़ा भ्रमित हो चुका हूं आपके दूसरे अध्याय को सुनकर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धि या कर्म, सकाम कर्म या बुद्धि योग, इनमें से श्रेय